بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتنت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہی پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگی نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا۔ پھر ہم آپ کو شیگھر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کاری کے لیے تیار کر دیں گے۔ اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاپ پرد ہو، اور شیگھر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا، کنتو اتین درباگ والا اس سے کترائے گا، وہی جو بڑی آگ میں گر پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ نشچت روپ سے جس نے اپنے آپ کو پوتر بنا لیا وہ سفل ہو گیا، اور جس نے اپنے پالنہار کے نام کا اسمرن کیا پھر نماز ادا کی۔ نہیں، بلکہ تم تو سانسارک جیون کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ پرلوک ادھک اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ دوستوں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ دوستوں، آج بدھوار ہے، فروردین ماہ کی 24، پوتر رمضان کی 11 اور اپریل کی 13 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اپرانت راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت آپ پوتر رمضان پر وشیش کاریکرم سنیں گے، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تو دوستوں، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ شروع میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ افغان جنتا نے ایران اور افغانستان کے دشمنوں کو سبق سکھا دیا۔ ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ کرانتی پوری شان کے ساتھ جاری ہے۔ بھارت میں ایک وشیش سمودایوں کے گھروں کو گرانے پر پرتکریائیں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے روسی سینا پر جن سنگھار کا آروپ لگایا۔ اور اب آپ مریم مہر دادی اور اختر عباس سے وستار سے سماچار سنیے۔
افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایران کے دوتاواس کے سامنے مت بھید اور فتنے کے ورودھ میں ایک بڑا جن پردرشن کیا گیا، جس میں شرارتی تتووں کا ورودھ اور ایکتا کا سمرتھن تتھا ایران اور افغانستان کے بیچ بھائی چارے کے رشتوں کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے انوسار یہ ریلی بدھوار کی صبح افغانستان کے وبھن دلوں اور سنگھنوں کی کال پر ہوئی، جس پر کابل کی جنتا نے ویاپک استر میں بھاگ لیا۔ اس اوسر پر ریلی میں بھاگ لینے والوں نے ایران اور افغانستان کے راشٹروں کے بیچ مترتا کے چنہ کے روپ میں اپنے ہاتھوں میں گلدستے بھی اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں شامل کچھ لوگوں نے ایران پریس سے بات کرتے ہوئے ایران اور افغانستان کے راشٹر کے دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں ہوشیاری کی آوشیکتا پر بل دیا۔ یاد رہے کہ ایران اور افغانستان کے سمبندھوں کے ورودھ ہی کچھ شرارتی تتوں نے دشمنوں کی سازشوں اور سوشل میڈیا کی جھوٹی تصویروں سے پربھاوت ہو کر سوموار کو کابل میں ایران کے دوتاواس اور ہرات میں ایران کے وانجی دوتاواس کے سامنے اگر پردرشن کیا اور پتھراؤ کیا تھا۔
اسلامی کرانتی کے سرکشک بل IRGC کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے کہا ہے کہ اسلامی کرانتی پوری شان اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق IRGC کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل علی فدوی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دشمنوں دوارا قدم قدم پر ڈالی جانے والی سبھی بادھاؤں کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے اسلامی کرانتی نرنتر وکست ہو رہی ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایران کی اسلامی کرانتی 11 فروری 1979 میں سورگیہ امام خمینی کے نیتتو میں سفل ہوئی تھی، جس کے بعد سے آج تک اسلامی کرانتی کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں पहुंच रही है। इस क्रांति ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास सहित ईरानी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन किए हैं। साथ ही दुनिया के वे देश जो साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे, उन्हें इस्लामिक क्रांति ने ऐसा हौसला दिया है कि आज छोटे से छोटा देश भी जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से संकोच नहीं करता।
अवैध अधिकृत वेस्ट बैंक में हालात तनावग्रस्त हैं और इसराइली सेना से फिलिस्तीनियों की झड़पों का क्रम जारी है। मीडिया सूत्रों ने अवैध अधिकृत वेस्ट बैंक में ज़ायनी पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पों के जारी रहने की खबर दी है, जिसमें अनेक फिलिस्तीनी घायल हुए जबकि कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलिस्तीन अल योम की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायनी पुलिस ने उत्तरी रामल्ला में स्थित सेंजल कस्बे पर हमला किया, जिसमें फिलिस्तीनियों की उससे झड़प हो गई। इसी प्रकार अलखलील शहर में भी पुलिस ने फिलिस्तीनियों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले फायर किए, जिसमें दो फिलिस्तीनी घायल हो गए। बैतलहम के दक्षिण में स्थित अलखजरा कस्बे में निरंतर तीसरी रात ज़ायनी पुलिस और फिलिस्तीनी युवाओं के बीच झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार अलखलील के उत्तर में स्थित बैत अम्र कस्बे में भी जेनिन कैंप के समर्थन में फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किए, जिस पर इसराइली पुलिस ने हमला कर दिया, जिसमें अनेक फिलिस्तीनी घायल हो गए।
सीरिया में अमरीकी समर्थित कुर्द मलेशिया ने हस्का शहर का घेराव कर रखा है। सीरिया के हस्का शहर के गवर्नर ने बताया कि कुर्द मलेशिया SDF ने कई दिन से इस शहर का घेराव कर रखा है। सीरिया के सरकारी समाचार चैनल अल अखबारिया के अनुसार अलहस्का के गवर्नर कस्सान खलील ने कहा है कि SDF लगातार 4 दिनों से शहर का घेराव किए हुए है, जिसकी वजह से शहर में खाद्य पदार्थों का भंडार कम होने लगा है। उन्होंने कहा कि SDF खाद्य पदार्थ और रोटी पकाने के लिए आवश्यक ईंधन हस्का शहर में जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से रमजान में लोगों को परेशानी हो रही है। ज्ञात रहे कि उत्तरी सीरिया के अलहस्का सहित दूसरे क्षेत्रों में जनता आतंकवादी अमरीकी सेना और SDF के विरुद्ध प्रदर्शन करते रहे हैं।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत में रामनवमी पर निकाली गई यात्राओं के बीच कम से कम 4 राज्यों में हिंसक झड़पें हुई, जिनमें कई लोग घायल हो गए और काफी संपत्ति का नुकसान हुआ। गुजरात में हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। 10 अप्रैल को रामनवमी से जुड़ी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुई। गुजरात के अणंग और साबरकांठा जिलों में दो शहरों में यात्राओं के दौरान दो समुदायों के बीच पहले पत्थरबाजी हुई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक देखते हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी गई। पुलिस ने भी लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले दागे। कई लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिस कर्मी भी शामिल थे। देर शाम अड़ंगद के खंबात शहर में पुलिस को घटनास्थल से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मृतक की उम्र 60-65 साल बताई है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और झारखंड के लोहरदगा में भी लोग सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और सरकार ने स्थानीय लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया है।
भारत में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 6.95% पर पहुंच गई है। यह खुदरा मुद्रास्फीति का 17 माह का उच्च स्तर है। मुद्रास्फीति अब भी भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। फरवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6.07% के स्तर पर थी।
भारत में कोयले का संकट अभी टला नहीं है। कई कोयला खदानों में उत्पादन इस वक्त पिछले 9 साल के मुकाबले सबसे निचले स्तर को छू रहा है। दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ रही है। कोरोना के दौर से बाहर आने के बाद उद्योगों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने और पिछले नुकसानों की भरपाई के लिए अधिक बिजली चाहिए। इन स्थितियों में जानकारों का कहना है कि देश के कई राज्यों में घंटों बिजली कटौती का दौर इस बार फिर लौट सकता है।
भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग व नौसैन्य क्षेत्र में संबंध बढ़ाने के लिए दोनों देश भविष्य की बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। इसके तहत आने वाले समय में भारतीय शिपयार्ड में अब अमरीकी नौसेना के समुद्री जहाज और युद्धपोतों की मरम्मत और देखरेख का काम देखने को मिल सकता है। इससे भारत अमरीका के बीच रक्षा व्यापार बढ़ाने के साथ ही भारतीय शिपयार्ड का बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये फैसला सोमवार को अमरीका के वॉशिंगटन में मंत्री स्तर की बैठक में लिया गया।
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी सेना पर यूक्रेन में जनसंहार का आरोप लगाया है। बाइडेन ने पिछले हफ्ते रूसी हमले के वैश्विक आक्रोश के बीच पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था। राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को पहली बार व्लादिमीर पुतिन की सेना पर यूक्रेन में नरसंहार का आरोप लगाया, जहां रूस तबाह हुए बंदरगाह शहर मारियापोल को कब्जे में करने के लिए अपने अभियान को तेज कर रहा है। बाइडेन ने आरोप लगाया कि पुतिन यूक्रेनी होने के विचार को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आयोवा में एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने पत्रकारों से कहा, हाँ, मैंने इसे नरसंहार कहा है। बाइडेन ने कहा कि यह तय करना वकीलों पर निर्भर करेगा कि रूस का आचरण नरसंहार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है या नहीं, लेकिन साथ ही कहा कि निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है। बाइडेन की टिप्पणी की यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से सराहना की है। वे पश्चिमी नेताओं को अपने देश पर रूस के आक्रमण का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर चुके हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। इस्लामी क्रांति के नेता ने सऊदी अरब को नसीहत की है। जायजा ले रहे हैं अहमद अब्बास।
इस्लामी इनकलाब के नेता आयतुल्लाह रज़मा खामेनेई ने मंगलवार की शाम ईरान की इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उच्चाधिकारियों से अपनी मुलाकात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बात की। सुप्रीम लीडर ने यमन की मजलूम जनता की बहादुरी की तारीफ करते हुए सऊदी अधिकारियों को यमन की जंग रोक देने की नसीहत की और कहा कि आप उस जंग को क्यों जारी रखे हुए हैं, जिसके बारे में आप भी जानते हैं कि जीत नहीं सकते। कोई रास्ता तलाश कीजिए और खुद को इस लड़ाई से बाहर निकालिए। आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई यमन की उस जंग की बात कर रहे हैं जिसका 8वां साल शुरू हो गया है। इस बीच सऊदी गठबंधन, जिसने बड़े बड़े दावे किए थे, यमन की जनता का प्रतिरोध नहीं तोड़ पाया और यमन की सेना और अंसारुल्ला आंदोलन को कमजोर करने में नाकाम रहा। इतना ही नहीं, यमन की सेना और अंसारुल्ला आंदोलन ने अपने जवाबी हमलों में मिसाइलों और ड्रोन विमानों से सऊदी अरब को सबक सिखाया है और सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको के कई प्रतिष्ठानों, इसी तरह सामरिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कई अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर गत 2 अप्रैल से संघर्ष विराम शुरू तो हुआ है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी सऊदी गठबंधन ने अब तक 100 बार से अधिक इस संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और साथ ही उसने यमन की नाकाबंदी भी खत्म नहीं की है, बल्कि सहायता सामग्री लेकर यमन जाने वाले जहाजों को रोका है। इसके बावजूद यमन की नेशनल सेल्वेशन सरकार देशहित को ध्यान में रखते हुए और इस उम्मीद के साथ कि यमन की जनता की कठिनाइयों में कमी आएगी, संघर्ष विराम का पालन कर रही है। यमन के बारे में सऊदी अरब की रणनीति पूरी तरह नाकाम साबित हुई और इसी के मद्देनजर इस्लामी क्रांति के नेता ने कहा कि सऊदी अधिकारी कोई रास्ता तलाश करें और यमन की जंग के दलदल से निकल आएं। उनका मानना है कि इस समय यमन में जो संघर्ष विराम लागू हुआ है, वो यमनी पक्षों के बीच वार्ता और शांति प्रक्रिया शुरू होने का अच्छा अवसर साबित हो सकता है और यमन के खिलाफ सऊदी अरब और इमारात की बेनतीजा जंग को खत्म करने की भूमिका बन सकता है। یہ بھی ایک سچائی ہے کہ سعودی عرب نے کئی بنیادی کارنوں سے سنگھرش ویرام سویکار کیا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ سعودی عرب اور اس کے سمرتھکوں کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ یمن کے پرتیرودھ اور جوابی حملے کی طاقت میں لگاتار وستار ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس جنگ کو جیت پانا سمبھو نہیں ہے۔ اس زمینی سچائی کے مد نظر سعودی عرب نے سنگھرش ویرام کا پرستاو سویکار کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تک سعودی گٹھ بندھن کی یہ کوشش رہی تھی کہ وہ طاقت کے استعمال سے اور طاقت کے بل بوتے پر یمن کی زمینی سچائی اور راجنیتک سمیکرنوں میں کوئی ایسا بدلاؤ لے آئے کہ اپنی پٹھو سرکار صنعاء میں استھاپت کر سکے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
نیویارک میں ایک آتنکوادی حملے پر پیش ہے ایک رپورٹ رویش سیدی کی زبانی۔
نیویارک کے سب سے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں ایک ابھوتپور گھٹنا ہوئی ہے، ایسی گھٹنا جو زیادہ تر فلم کے سین میں دکھائی دیتی ہے۔ ایک لمبا چوڑا آدمی جو بھگوا رنگ کی سیفٹی جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور ساتھ ہی ماسک لگائے ہوئے تھا، پہلے اس نے فائر سلینڈر کو کھولا جس کی وجہ سے میٹرو کے پورے ڈبے میں دھواں چھا گیا۔ چھ لوگوں کو دھوئیں کے کارن دم گھٹنے کی وجہ سے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ اسی دوران آروپی نے اندھادھن فائرنگ کرنی شروع کر دی جس میں کم سے کم 16 لوگ گھائل ہو گئے۔ استھانیہ میڈیا کا کہنا ہے کہ حملہور نے سمبھوتا اسموک بم پھینکا تھا اور اس کے بعد اس نے گولیاں چلائی تھیں، جس کے بعد بروکلین کے سنسٹ پارک اسٹیشن سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ہر اور خون سے لت پت یاتری پلیٹ فارم پر پڑے دکھائی دے رہے تھے، جن میں سے کئی گھائلوں کی حالت گمبھیر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حملہور کے پاس بھاری سنکھیا میں بلٹ میگزین تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے فائرنگ شروع کی خوش قسمتی سے اس کی بندوق خراب ہو گئی۔ کھوجی کتے ابھی بھی میٹرو اسٹیشن پر سراغ جٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں بم کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، جو کچھ تھا وہ یہی تھا۔ نیو یارک پولیس آیوکت کیچنٹ سیویل کہہ رہی ہیں کہ اس وقت ٹرین دھوئیں سے بھر گئی تھی جب اس نے گولیاں چلا دیں جو سب وے کے اندر اور پلیٹ فارم پر کئی لوگوں کو لگی ہیں۔ وہیں ایک 62 ورشیہ ویکتی کی فوٹو پرکاشت کی گئی ہے جس کا نام ہے فرانک جینس۔ اس کا پتہ بتانے والے کو $50,000 انعام دیا جائے گا۔ فرانک کی پہچان ایک وین کی نمبر پلیٹ سے کی گئی ہے۔ جس میٹرو پر یہ گھٹنا ہوئی ہے وہاں کا سیکیورٹی کیمرہ خراب ہے۔ میئر کا کہنا ہے کہ پہچان میں ہوئی دیری کا یہی مکھ کارن ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فرانک کے کئی ایسے ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں جس میں وہ بے گھر لوگوں اور نسلی بھید بھاؤ کے علاوہ یوکرین کے مدعے پر کڑی ٹپڑی کر رہا ہے۔ فرانک کی تلاش زوروں سے جاری ہے۔ نیو یارک سے آئی آر آئی بی کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ مدھیہ پردیش سمیت کئی راجیوں میں ہندوتوادی طاقتیں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ بیورہ دے رہے ہیں نئی دلی سے شمشاد کاظمی۔
مدھیہ پردیش کے کھرگون میں رام نومی کے افسر پر نکالی گئی شوبھا یاترا کے دوران ہنسا بھڑکنے کے بعد استھتی تناؤ پورن ہے لیکن نینترن میں بتائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اب تک 100 آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ مسلم دھرم گروہوں کا دعویٰ ہے کہ پرشاسن جان بوجھ کر ان کے سمودائے کے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان کے گھروں اور دکانوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رام نومی کے جلوس میں شامل لوگوں نے مسجدوں پر بھگوا جھنڈے پھہرائے اور آپتی جنک نعرے بازی کی، لیکن مدھیہ پردیش کے منتری وشواس سارنگ نے شوبھا یاترا پر پتھراؤ کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور آروپیوں کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے دھوست کیے جانے کو صحیح بتایا۔
جنہوں نے رام نومی کے جلوس پر پتھراؤ کیا ہے ان کے پتھر چلانے کی مانسکتا کو کچلا جائے گا، اور اب اس طرح کی کوئی بھی باتیں مدھیہ پردیش میں نہیں چلے گی، اور اسی لیے وہ جو دوشی ہیں ان کو نیست نابود کیا جا رہا ہے، وہ بلڈوزر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور یہ ایک میسج ہے۔
اسی بیچ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ادھیکش اسد الدین اویسی نے کھرگون میں رام نومی جلوس کے دوران بھڑکی ہنسا کے آروپیوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جانے کو لے کر مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کی کڑی آلوچنا کی اور ان پر مسلم سمودائے کے پرتی پکشپات پورن رویہ اپنانے کا آروپ لگایا۔
اٹ کلیئرلی شوز دیئر بائس ایٹیٹیوڈ آف دی مدھیہ پردیش بی جے پی چیف منسٹر اینڈ ہز گورنمنٹ۔
انہوں نے ایک سمواددہ سمیلن میں کہا کہ مدھیہ پردیش کی سرکار نے کس قانون کے تحت مسلمانوں کو گھر دھوست کیے ہیں، یہ جنیوا کنونشن کا اُلنگھن ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجیہ سرکار مسلمانوں کے جیون اور سمپتی کی سرکشا میں اسفل رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کی بھاجپا سرکار نے کہا ہے کہ ہنسا کے دوران سارجنک اور نجی سمپتی کو ہوئے نقصان کی بھرپائی دنگائیوں سے کی جائے گی۔ کانگریس کے ورشٹھ نیتا راہل گاندھی نے بھاجپا سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ سرکار کو مہنگائی اور بے روزگاری جیسی عام آدمی سے جڑی سمسیاؤں پر بلڈوزر چلانا چاہیے، لیکن ان کے انوسار بھاجپا کے بلڈوزر پر تو نفرت اور دہشت سوار ہے۔ اسی بیچ کرناٹک میں حجاب اور حلال وواد کے بعد مندر کے سامنے مسلمان پھل ویپاریوں کے دکانیں توڑنے اور ان کے پھل سڑک پر پھینکے جانے کے بعد راجے میں بڑھتی سامپردائک گھٹناؤں پر وپکشی نیتاؤں نے جہاں مورچہ کھولا ہے، وہیں اب بھاجپا کے اندر سے بھی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ بھاجپا کے دو ودھائکوں کے بعد اب کرناٹک کے پورو مکھیہ منتری بی ایس یدورپا نے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو شانتی اور سمان سے جینے دیجیے۔ کرناٹک میں ہندو سنگٹھنوں کی طرف سے مسلمانوں اور ان کے ویوسائیوں کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان سے سرکار کو وپکشی دلوں کی آلوچناؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔ ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम ईश्वर आतिथ्य, और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम आज कल।
ईश्वरीय आतिथ्य।
दोस्तों, रमजान के पवित्र महीने में विशेष कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। मोहम्मद मेहदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
تو آئیے سب سے پہلے گیارہویں رمضان کی دعا اور اس کا انواد سنتے ہیں۔
اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکر الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علي في السخط والنيران بعونك
प्रभुवर आज के दिन भलाई को मेरे लिए प्रिय और पाप एवं अवज्ञा को अप्रिय बना दे और इस दिन अपनी सहायता से अपने क्रोध और नरक को मेरे लिए वर्जित कर दे। हे सहायता चाहने वालों के सहायक।
दोस्तों, पवित्र रमजान महीने के 10 दिन गुजर गए हैं। आज रमजान महीने की 11वीं तारीख है। 10 दिनों से अधिक का समय बीत रहा है जब से हम ईश्वरीय नियमतों से लाभ उठाकर अपनी आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम समुद्र की मछलियों की तरह हो जाएं, यानी जिस तरह से समुद्र की मछलियां पानी के महत्व को नहीं समझती, उसी तरह हम भी रमजान महीने के मूल्यवान क्षणों की कीमत न समझें। रमजान का पवित्र महीना उस शीतल जल की भांति है जो समुद्र की मछलियों की भांति हमें घेरे हुए है और हम उसके अंदर हैं और इतना हमारे निकट है कि हम उसकी निकटता का आभास नहीं कर रहे हैं।
ऐसा बहुत होता है कि जब कोई नियमत बहुत अधिक होती है या बहुत करीब होती है तो आम तौर पर लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं, जैसे हवा और उसमें मौजूद ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी और पानी आदि। ये वे चीज़ें हैं जिनकी कीमत व महत्व के बारे में आम तौर पर कोई नहीं सोचता। इसी प्रकार जब इंसान का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता है तो वो कभी भी बीमारियों और बीमारियों से होने वाली तकलीफों के बारे में नहीं सोचता। मगर जब इंसान बीमार हो जाता है और बीमारी के कारण उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब इंसान की समझ में आता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी नेमत है। कहीं ऐसा न हो कि रमजान का पवित्र महीना और उसके मूल्यवान क्षण चले जाएं और हम उनसे लाभ न उठा सकें।
पवित्र रमजान महीने के दो रूप हैं, एक विदित और दूसरा निहित। रमजान महीने का जाहिर यह है कि वह 29 या 30 दिन का होता है। उसमें लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और दुआएं आदि करते हैं। परंतु रमजान महीने का एक बातिन व निहित है और वह एक अलग दुनिया है। रमजान वह महीना है जो हजार महीनों से बेहतर है। यह वह महीना है जिसमें महान ईश्वर ने कुरान नाजिल किया है। यह इबादत और पवित्र कुरान की तिलावत का महीना है। हर चीज की एक बहार होती है और कुरान की तिलावत की बहार रमजान का पवित्र महीना है।
पवित्र रमजान महान ईश्वर से बात करने का महीना है। वैसे इंसान हर समय अपने पालनहार से बात कर सकता है, परंतु रमजान महीने की बात ही कुछ और है। रमजान का पवित्र महीना आत्मनिर्माण का महीना है। ये दिलों को गुनाहों से पवित्र करने और बनाने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें इंसान अपने पालनहार को अधिक याद करता और उसका सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये वो महीना है जिसमें रोजेदार इंसान की हर सांस तस्बीह समझी जाती है। ये वो महीना है जिसमें इंसान अपने दिल को दुनिया की मोहमाया से दूर करता है।
यहाँ एक बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वह ये कि आत्मनिर्माण और गुनाहों से दूरी आदि कोई सरल कार्य नहीं है। हर इंसान न तो गुनाहों से दूरी कर सकता है और न ही अपने दिल से दुनिया की मोह माया निकाल सकता है, किंतु रमजान के पवित्र महीने में एक राज है और अगर इंसान उस राज को समझ जाए तो गुनाह जैसे कार्यों से दूरी करने में मदद मिलेगी और वह राज पवित्र कुरान को नाजिल करने के लिए इस महीने का चयन है। आखिर कोई रहस्य अवश्य है जिसकी वजह से महान ईश्वर ने पवित्र कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया। महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरे बकरा की आयत नंबर 129 और 151 और सूरे आले इमरान की आयत नंबर 164 और इसी प्रकार सूरे जुमा की दूसरी आयत में कहता है कि हमने पैगंबरों को भेजा है ताकि वे लोगों पर हमारी आयतों की तिलावत करें, उनका आत्मनिर्माण करें और उसके बाद उन्हें हिकमत और किताब की शिक्षा दें। यहाँ एक ध्यान योग्य बिंदु यह है कि कुरान के नाजिल होने, उसकी आयतों की लोगों पर तिलावत करने और लोगों को हिकमत व किताब की शिक्षा देने में संबंध अवश्य हैं।
रमजान के पवित्र महीने को कुरान की बहार का नाम दिया गया है। इस महीने में बहुत से लोग पवित्र कुरान की तिलावत को बहुत महत्व देते हैं, जो अच्छी बात है, परंतु जितना अधिक उसकी तिलावत पर बल दिया जाता है, उसका दसवां हिस्सा भी उसके अर्थों को समझने और उसमें चिंतन मनन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर मुसलमान पवित्र कुरान की आयतों में गौर फिक्र करें तो उनके मध्य बहुत से मतभेद स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
रोचक बात यह है कि पवित्र कुरान में कुरान की तिलावत करने से अधिक उसकी आयतों में चिंतन मनन के लिए कहा गया है। महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि जिसने अपने को पाक कर लिया वह कामयाब हो गया। महान ईश्वर कभी भी अपने वादे का उल्लंघन नहीं करेगा। यह केवल महान ईश्वर है जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। रमजान का पवित्र महीना ईश्वरीय रहमतों और नेमतों के नाजिल होने का महीना है। यह आत्मशुद्धि का महीना है। रमजान आध्यात्मिक व नैतिक दृष्टि से खुद को सजाने सवारने का महीना है। गुनाह वह चीज है जो दीमक की भांति इंसान की मूल प्रवृत्ति को खराब कर देता है, पर महान ईश्वर ने समस्त इंसानों के लिए तौबा का दरवाजा खोल रखा है। जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है वह उस इंसान की भांति हो जाता है जो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो।
महान ईश्वर ने रमजान महीने में कुरान नाजिल करके हमें बता दिया कि ये खुद बहुत बड़ी नेमत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे महान ईश्वर ने हिदायत का चिराग हमारे हाथ में दे दिया। यहाँ एक बिंदु को बयान करना जरूरी है और वो ये है कि कोई ये न सोचे कि अगर उसने रमजान महीने का रोजा रख लिया, कुरान की तिलावत कर लिया और रमजान महीने में रोजे रख लिया तो आत्म शुद्धि हो गई, बल्कि उसे महान ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि उसके नेक कार्यों को कबूल करे और उसे अपनी असीम कृपा व दया का पात्र बनाए। किसी इंसान को अपनी इबादतों और नेकियों पर कभी भी घमंड व नाज नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम रोजेदार इंसान की नियत के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि कार्यक्रम के इस भाग पर भी आप ध्यान देंगे। इंसान जिस तरह से नमाज पढ़ने के लिए पहले नियत करता है और उसी तरह रोजा रखने से पहले रोजे की नियत करनी पड़ती है। यानी इंसान नियत करे कि महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए रोजा रख रहा है और उन चीजों से परहेज करेगा जिनसे रोजा बातिल हो जाता है। अगर इंसान दिल में यह नियत कर ले तो काफी है, जबान से अदा करने की कोई जरूरत नहीं। इंसान हर रात अगले दिन के रोजे की नियत कर सकता है, परंतु अगर इंसान पूरे महीने के रोजे की नियत एक ही बार कर ले तो अधिक बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति दिन को रोजे की नियत करे तो उसका रोजा बातिल है, यानी उसका रोजा ही नहीं है। परंतु उस व्यक्ति को चाहिए कि पूरे दिन उन चीजों से परहेज करे जिनसे रोजा बातिल हो जाता है और रमजान महीने के बीत जाने के बाद उसकी कजा करें।
इसी तरह अगर किसी व्यक्ति पर रोजे की कजा वाजिब है और वो कजा रमजान महीने के वाजिब रोजे की न हो, जैसे कफारे के रोजे, और इंसान ने दोपहर के निकट तक रोजे की नियत नहीं की है और इस दौरान उसने किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल भी नहीं किया है जिससे रोजा टूटता है, तो वो रोजे की नियत कर सकता है और उसका रोजा सही है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो और वो रोजा नहीं रख सकता तो कोई बात नहीं है, ہاں اگر رمضان مہینے کے مد میں بیماری سے ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا اور روزے کی نیت کرنا انیوار نہیں ہے، پرنتو اگر دوپہر سے پہلے ہو اور وہ کوئی چیز ایسی انجام بھی نہ دی ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھے اور رمضان کا مہینہ بیت جانے کے بعد اس کی قضا بھی کرے۔
ایک دن ایک ویکتی پیغمبر اسلام کی سیوا میں آیا اور اس نے پوچھا کہ ہے ایشوری دود، کیا ایشور ہم سے سمیپ ہے اور ہم اس سے دھیرے دھیرے پرارتھنا کر سکتے ہیں، یا وہ دور ہے اور اسے اونچی آواز میں بلانا چاہیے؟ پیغمبر اسلام نے ابھی زبان بھی نہیں کھولی تھی کہ حضرت جبرائیل آیت لے کر اترے اور سمست کالوں میں مہان ایشور کی اپاسنا کرنے والوں کا جواب دے دیا۔ مہان ایشور پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں کہتا ہے، ہے پیغمبر، اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب دعا کرنے والا مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔
دوستو، یہ رمضان کا پوتر مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم سب کے پالنہار نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ معصوموں اور مہان دھارمک ہستیوں کی جیونی کے ادھیان سے یہ بات اسپشٹ ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھتے اور اس کا بہت ادھک سمان کرتے تھے۔ جب رمضان مہینے کا چاند دکھائی دیتا تھا تو پیغمبر اسلام قبلے کی اور مک کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور مہان ایشور سے سواستھ و سرکشا کی دعا کرتے تھے اور نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور پوتر قرآن کی تلاوت کرنے میں اس کی سہایتا مانگتے تھے۔
اس پوتر مہینے میں پیغمبر اسلام دوسرے مہینوں کی اپیکشا ادھک نیک کام انجام دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام جو نیک کاری کرتے تھے ان میں سے ایک روزے داروں کا کھانا کھلانا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب رمضان کا پوتر مہینہ آ جاتا تھا تو پیغمبر اسلام پہلے سے ادھک ضرورت مندوں پر دھیان دینے لگتے تھے اور لوگوں سے سفارش کرتے تھے کہ وہ اس مہینے میں ادھک سے ادھک پوتر قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی پرکار جب دو تہائی رمضان مہینہ گزر جاتا تھا تو پیغمبر اسلام اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے اور وہ مہان ایشور کی ادھک اپاسنا کرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں بہترین عمل و کاریہ کیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، حرام کاریوں سے پرہیز اس مہینے کے بہترین کاریہ ہیں۔ تو دوستوں، آج کے کاریکرم کا سمے یہی پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں انمتی دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران، سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ آج کل
دوستو، کاریکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے کاریکرم میں ہم ایران کی ارتھ ویوستھا میں نالج بیسڈ پروڈکشن کے مہتو پر چرچا کریں گے۔ مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، ایران کی اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نئے ہجری شمسی ورش 1401 کو روزگار پیدا کرنے والا نالج بیسڈ پروڈکشن کا نام دیا ہے۔ पिछले एक दशक के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता वर्ष के नारे में लगातार 5 वर्षों से प्रोडक्शन का या उत्पादन का शब्द प्रयोग करते रहे, जबकि कुछ वर्षों से नारे में प्रोडक्शन और उत्पादन शब्द के बिना ही प्रोडक्शन या उत्पादन के समर्थन की ओर इशारा किया गया है।
मिसाल के तौर पर सुप्रीम लीडर ने 1397 हिजरी शमसी वर्ष अर्थात 2018 ईस्वी को ईरानी वस्तुओं के समर्थन का नाम दिया था। इसमें उत्पादन का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन इससे खुद ही उत्पादन के समर्थन की बात समझ में आती है। ये विषय इस बात का चिन्ह है कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता घरेलू उत्पाद को दुश्मनों के आर्थिक युद्ध से मुकाबले अर्थव्यवस्था में विविधता, एकल उत्पाद अर्थव्यवस्था से छुटकारा पाने, प्रतिबंधों को प्रभावहीन बनाने और देश को आर्थिक विकास की पटरी पर लाने का बेहतरीन उपाय करार देते हैं।
वास्तव में घरेलू उत्पादन प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था की रणनीति का मुख्य स्तंभ है, जिस पर ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर बल देते हैं। दुनिया के औद्योगिक देश अपने उत्पादन पर ध्यान देकर अपने विकास के मार्ग को तय करते हैं। नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री एरिक रेनर्ट कैसे अमीर देश अमीर हो गए और गरीब देश महत्वहीन ही रह गए नामक अपनी किताब में लिखते हैं, राष्ट्रीय धन और शक्ति के निर्माण के लिए पिछली कुछ शताब्दियों में समृद्ध राष्ट्रों की रणनीतिक उपलब्धि एक मजबूत और गुणवत्ता वाले उत्पादक क्षेत्र की रही है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड और 20वीं शताब्दी में अमेरिका, जर्मनी, जापान और सोवियत संघ की प्रगति, कोरिया, ताइवान और अब चीन जैसे नए औद्योगिक देशों के लिए धन प्राप्त करने की कुंजी के रूप में उत्पादन में सक्रिय रही है।
महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मूल रूप से बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान अर्थव्यवस्था में उत्पादन की श्रेणी के कारण अधिक संभव है। ज्यादातर रोजगार परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादन या प्रोडक्शन पर निर्भर होता है। वर्ष 2005 में जापान का उत्पादन क्षेत्र देश की कुल अर्थव्यवस्था में 20.2% की भागीदारी अदा कर रहा था, जबकि जर्मनी में 23.2 और अमरीका में 14.4% था। इन आंकड़ों पर नज़र डालने से पता चलता है कि अगर अमेरिका का उत्पादन क्षेत्र जापान के उत्पादन क्षेत्र जैसा होता तो इस देश में 70 लाख लोगों को मजबूत टिकाऊ और अच्छे वेतन के साथ रोजगार मिलता, और अगर उसका उत्पादन विभाग जर्मनी के उत्पादन विभाग की तरह होता तो अमेरिका में 1 करोड़ से ज़्यादा और रोजगार होते।
एक और मुद्दा यह है कि यदि उत्पादन में तेजी आती है तो एक बड़ी समस्या के रूप में सामुदायिक आजीविका के क्षेत्र में पाई जाने वाली चिंता कम हो जाएगी। हालिया वर्षों में इस्लामी क्रांति के दुश्मनों ने तेहरान पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगाकर जनता पर बहुत अधिक दबाव डाला और जनता व व्यवस्था के बीच खाई पैदा करके लोगों में नाराजगी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ईरान की जनता उनकी साजिशों को समझती है और उनके सारे षड्यंत्रों पर लगातार पानी फेरती रही है। उत्पादन और विशेष रूप से रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने से लोगों की आजीविका बाहरी दबावों से कम प्रभावित होती है।
दोस्तों, जब ध्यान उत्पादन पर केंद्रित हो जाता है तो उत्पादन के लिए तेल की आमदनी से जो बजट विशेष किया जाता है वो खत्म या कम हो जाता है। ईरान में कृषि, पेट्रोकेमिकल, तेल व गैस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और इनमें से हर क्षेत्र की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ईरान में जो कृषि योग्य जमीनें हैं उनमें 1/3 से भी कम में कृषि की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जिन जमीनों में कृषि की जा सकती है कि अगर उन सब पर कृषि की जाए तो ईरान में बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अगर कृषि क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का सही से प्रयोग किया जाए और लाभ उठा जाए तो बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल आदि क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं का सही से लाभ उठाया जाए तो हजारों नहीं बल्कि लाखों बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे। आर्थिक जगत के बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जो संभावनाएं ईरान में मौजूद हैं, अगर उन पर सही से काम किया जाए तो न केवल सबको रोजगार मिल जाएगा और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, बल्कि बहुत से क्षेत्रों में लोगों की कमी का सामना होगा और देश के विकास और प्रगति के क्षेत्र में क्रांति नहीं बल्कि महाक्रांति उत्पन्न हो जाएगी।
आज इस्लामी गणतंत्र ईरान को विभिन्न क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंधों का सामना है, परंतु इन सब के बावजूद ईरान लगभग हर क्षेत्र में ध्यान योग्य प्रगति कर रहा है। ईरान इराक युद्ध के दौरान दूसरे देश ईरान को कटीले तार भी नहीं देते थे, पर आज वही ईरान है जो मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है, शांतिपूर्ण लक्ष्यों के लिए परमाणु तकनीक से लाभ उठा रहा है, विभिन्न प्रकार के वाहनों का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से कि अब उस क्षेत्र का पता लगाना बहुत कठिन हो गया है कि ईरान ने किस क्षेत्र में प्रगति नहीं की है। रोचक बात यह है कि ईरान ने विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगतियां की हैं और कर रहा है, वे दुश्मनों विशेषकर अमेरिका की ओर से लगाए गए गैर कानूनी और अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों के काल के हैं। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि ये दुश्मनों के प्रतिबंधों का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, अगर दुश्मनों ने ईरान पर इतने सारे प्रतिबंध न लगाए होते तो आज ईरान उस स्थान पर न होता जहां वो है।
दोस्तों, ये सही है कि दुश्मनों के प्रतिबंधों के कारण कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न हुई और हो रही हैं, परंतु ईरान दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। इस प्रकार से कि दुश्मनों की समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान को प्रगति से रोकने के लिए और क्या करें। अगर ईरान मजबूत न होता तो बहुत पहले उस पर सैनिक हमला कर देते, परंतु ईरान की इस्लामी व्यवस्था के दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह पता है कि ईरान पर हमले का अर्थ अपनी तबाही को दावत देना है। दुश्मनों विशेषकर अमेरिका ने ईरानी राष्ट्र की आर्थिक कमर तोड़ने और उसे प्रगति से रोकने के लिए तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति अपना रखी है, परंतु ईरान तेहरान के खिलाफ प्रतिबंधों की परवाह किए बिना अर्थव्यवस्था सहित हर क्षेत्र में ध्यान योग्य प्रगति कर रहा है और दुश्मनों के प्रतिबंधों की वजह से ईरानी राष्ट्र विशेषकर युवाओं की क्षमताएं व योग्यताएं निखर कर सामने आ रही हैं।
दोस्तों, एक चीज देशों के बीच व्यापार है जो आर्थिक प्रगति का कारण बनता है। देशों के बीच व्यापार में वे देश अधिक सफल रहते हैं जिनके उत्पाद अच्छे और सस्ते होते हैं। अगर किसी देश के उत्पाद अच्छे हैं मगर महंगे हैं तो उसे सब नहीं खरीद सकते। इस प्रकार के स्थिति में उन देशों की अर्थव्यवस्था अधिक प्रगति नहीं कर सकती जिनके उत्पाद की विशेषता इस प्रकार की होगी। ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि अगर उत्पादन अच्छा हो तो लोगों को रोजगार मिलने में वो प्रभावी होगा और महंगाई को कम करने में भी वो प्रभावी होगा। इसी प्रकार सर्वोच्च नेता कहते हैं कि अगर उत्पादन अच्छा हो तो बजट बनाने और राष्ट्रीय मुद्दा के महत्व के अधिक होने में भी उसका प्रभाव है।
ध्यान योग्य बिंदु यह है कि वर्ष 1401 में ईरान की अर्थव्यवस्था में नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन के महत्व पर बल दिया गया है और इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इस वर्ष का जो नाम रखा है उसमें भी ये बिंदु मौजूद है। वो कहते हैं कि देश के आर्थिक विकास की दिशा में काम करना चाहिए, यानी नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन को आर्थिक विकास व प्रगति का आधार करार देना चाहिए। नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन का मतलब यह है कि तकनीक को विकास का आधार करार दिया जाना चाहिए।
यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि आज वे देश आर्थिक विकास व प्रगति में सबसे अधिक सफल हैं जिन्होंने तकनीक को अपने उत्पादन का आधार करार दे रखा है। जो देश जितना अधिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं वे उतना अधिक और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज वे देश पिछड़ेपन का शिकार हैं जो तकनीक के प्रयोग में पीछे हैं। आज के युग में तकनीक को विकास का इंजन समझा जा रहा है। आज के युग में अगर कोई देश हर प्रकार की संभावना से संपन्न हो, मगर अगर उसके पास तकनीक नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा। वहाँ के नागरिकों की योग्यताएं व क्षमताएं निखर कर सामने नहीं आ पाएंगी।
अमेरिका और दूसरे वर्चस्ववादी देश बड़ी आसानी से इस प्रकार के देशों का शोषण कर रहे हैं और उन्हें अपनी वर्चस्ववादी मांगे मानने के लिए बाध्य करते हैं। आज लोग जब अपने देश को पीछे देखेंगे तो अपनी सरकार को वर्चस्ववादी देशों की मांग मानने के लिए बाध्य करेंगे। नतीजा ये होगा कि जिस देश में अमेरिका और दूसरे वर्चस्ववादी पहुंच गए वहां शोषण आरंभ कर देंगे। इस प्रकार से वहां पर अपने साम्राज्य का पंजा गाड़ देंगे कि उन्हें वहां से उखाड़ना या निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की मिसाल सामने है। इन देशों में अमेरिका ने अपना वर्चस्व इस प्रकार से जमा रखा है कि सऊदी अरब और अरब अमीरात के अंदर ये कहने की हिम्मत नहीं है कि वो उनके यहाँ से चला जाए। आज सऊदी अरब और अरब अमीरात जैसे देश अमेरिका और उसकी तकनीक को अपने देश के विकास का आधार समझते हैं। यही नहीं, इन देशों के आम जनमत में ये धारणा व्याप्त है कि हमारी सुरक्षा का आधार भी अमेरिका है और अगर अमेरिका हमसे नाराज हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, जबकि इस्लामी गणतंत्र ईरान की मिसाल उनके सामने है।
आज अमेरिका सहित दुनिया के बहुत से वर्चस्ववादी ईरान पर अपनी मांगों को थोपने की चेष्टा में हैं और इसके लिए वे किसी प्रकार के प्रयास में संकोच से काम नहीं ले रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि ईरान हर क्षेत्र में अपनी संभावनाओं और लोगों, विशेषकर युवाओं की योग्यताओं व क्षमताओं से भरपूर लाभ उठा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि दुश्मनों के भारी दबाव के बावजूद ईरान हर क्षेत्र में ध्यान योग्य प्रगति कर रहा है।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। अफगान जनता ने ईरान और अफगानिस्तान के दुश्मनों को सबक सिखा दिया। ईरानी कमांडर का कहना है कि क्रांति पूरी शान के साथ जारी है। भारत में एक विशेष समुदाय के घरों को गिराने पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@aws.irib.ir। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।